बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। गुज़श्ता हफ्ते की अहम तरीन रुदादों के जायजे पर मबनी प्रोग्राम ज़ाविये निगाह के साथ मोहम्मद मेहदी शराफत हाजिर है। तो आइए पहले अनावीन पर एक नज़र डालते हैं।
जौहरी मुज़ाकरात और मगरबी ज़राए इब्लाग की प्रोपेगेंडा मुहिम। सदर बशार असद की हिमायत में शामी आवाम के मुजाहरे। सहाफी की गिरफ्तारी पर हिंदुस्तानी मुसलमानों का शदीद रद्देअमल। अफगानिस्तान के बारे में बरतानिया का ताजा मौकिफ। ईरान हिंदुस्तान ताल्लुकात हाल और मुस्तकबिल।
राबिते के लिए हमारा ईमेल है zawiya_nigah@sahartv.ir।
नाज़रीन, ईरान का पुरम नेतमी प्रोग्राम किसी न किसी शक्ल में आलमी ज़राए इब्लाग में हमेशा मौजूद रहता है। जुमेरात को वियना में IAEA के बोर्ड ऑफ गवर्नर्स के इजलास में ईरान के एटमी प्रोग्राम पर बहस हुई, तो दूसरी तरफ ग्रुप 5+1 ने इस ताल्लुक से ईरान के साथ मुजाकरात के लिए अपनी आमादगी का ऐलान किया है। इस बारे में हमारे तज़िया निगार का तबसरा।
ईरान के साथ एटमी मामले समेत जामे मुजाकरात के असरनो आगाज के लिए ग्रुप 5+1 के ऐलान आमादगी के बाद एक मरतबा फिर सियासी और सहाफती हलकों की तवज्जो इस जानिब मबजूल हो गई है। यह ऐसी हालत में है कि जब यूरोप के मुतजाद रवैये की वजह से इन मुजाकरात के नतीजा खेज होने के बारे में मुख्तलिफ तरह की कयास आराइयां की जा रही हैं। बाद सियासी मुबसरीन का कहना है कि यूरोप का ईरान के साथ मुजाकरात करने का मकसद ईरान के खिलाफ माहौल पैदा करने के लिए बहाना हासिल करना और गैर माकूल और यकतरफा मौकफ पेश करना है। हालांकि मुजाकरात सिर्फ उसी सूरत में मुफीद और नतीजा खेज हो सकते हैं जब वो एक मंतिकी दायरेकार में अंजाम पाएं और मुश्तरका उमूर और दो तरफा मौकफ की बुनियाद पर आगे बढ़ें। फ्रांसीसी वजीर खारजा एलन जोपे समेत मुजाकरात के दूसरे फरीक के बयानात से कि जिन्होंने मुजाकरात के आगे अभी से सवालिया निशान लगा दिया है और उनको बेनतीजा करार दिया है, ये नतीजा अखज किया जा सकता है कि यूरोप नतीजा खेज मुजाकरात के सिलसिले में संजीदा नहीं है। ये ऐसी हालत में है कि जब बुध के रोज वियना में मौजूद बाद सिफारतकारों के हवाले से दावा किया गया है कि सैटेलाइट के जरिए फारचीन के इलाके की हासिल करदा तस्वीर से इस बात की अक्कासी होती है कि इस इलाके में सरगर्मियों में शिद्दत पैदा हो गई है। यूरोप की बाज खबरसा एजेंसियों ने एटमी तवानाई की आलमी एजेंसी के सिफारतकारों के हवाले कहा है कि मौसूला तस्वीर से इस बात की निशानदही होती है कि इस इलाके में फौजी ट्रक और कुछ दूसरी गाड़ियां जौहरी साइट से जौहरी मवाद की मुंतकली में मसरूफ हैं ताकि वहां से हर किस्म के जौहरी मवाद की मौजूदगी के सबूत खत्म किए जा सकें। ये दावे ऐसी हालत में किए जा रहे हैं जब ईरान ने ऐलान किया है कि वो एटमी तवानाई की आलमी एजेंसी के मुआयनाकारों को फारचीन के इलाके के मुआयने की इजाजत देने के लिए तैयार है। बहरहाल ईरान के खिलाफ जो माहौल तैयार किया जा रहा है उसके सिलसिले में दो उमूर तवज्जो तलब हैं। एक ये कि ईरान की जानिब से यूरोपीय यूनियन के खारजा उमूर की सरबरा कैथरीन एश्टोन के खत का मुस्बत जवाब दिए जाने की वजह से ग्रुप 5+1 के बाज़ अराकीन इस बात पर मजबूर हो गए हैं कि दो में से किसी एक रास्ते का इंतखाब करें, या तो वो मुफीद और नतीजा खेज मुजाकरात में शामिल होने से इनकार कर दें या एटमी मामले के सिलसिले में ईरान के हुकूक का एहतराम करते हुए मुजाकरात की मेज पर वापस लौट आएं। दूसरा काबिले तवज्जो नुक्ता यह है कि ग्रुप 5+1 के अंदर इख्तलाफ राय पैदा हो गया है। उनमें से चीन और रूस एक मंतिकी दायरेकार के तहत मुजाकरात के असरनो आगाज के खाहां हैं, जबकि दूसरी तरफ अमरीका, बरतानिया, फ्रांस और जर्मनी मुजाकरात के कायल नहीं हैं और उनका मकसद पहले ही से वाज़ेह है। ये ममालिक ईरान के खिलाफ फौजी कार्रवाई की धमकी और ईरान मुखालिफ पाबंदियों का जवाब पेश करने के लिए अक्वामे मुत्तहदा की सलामती काउंसिल या एटमी तबानाई की आलमी एजेंसी के बोर्ड ऑफ गवर्नर्स की सतह पर ईरान के खिलाफ एक और करारदाद मंजूर करवाना चाहते हैं। वाज़ेह सी बात है कि यूरोप अपने इस मकसद की वजह से मुफीद मुजाकरात को बर्दाश्त नहीं कर सकता, इसलिए वो तशीराती मुहिम और खास किस्म का माहौल कायम करके मुफीद मुजाकरात को नाकाम बनाने की कोशिश कर रहा है। यूरोप के मौजूदा रवैये से इस बात की भी निशानदही होती है कि वो ग्रुप 5+1 के दाखिली इख्तलाफात की वजह से एक तरह की सियासी बौखलाहट का शिकार है और इसी वजह से ईरान के साथ इख्तियार किए जाने वाले रवैये की नौईयत के बारे में उसका बुध के रोज होने वाला इजलास भी बगैर किसी नतीजे के खत्म हो गया है। بہرحال یہ بات مسلم ہے کہ ایران کے سلسلے میں یورپ کی مخاصمانہ پالیسی، ایران پر انسانی حقوق کی پامالی اور دہشت گردی کی حمایت کا الزام لگانے اور ایران کے پرامن ایٹمی پروگرام کے بارے میں بار بار کے بے بنیاد دعووں کو دہرانے جیسی ناکام پالیسیوں کے ساتھ جاری رہی ہے، اور ان تمام اقدامات کا مقصد خطے اور دنیا کی آزاد اقوام کے لیے اسلامی نظام حکومت کے نمونۂ عمل بننے کی راہ میں رکاوٹیں کھڑی کرنا ہے۔
ناظرین، شام کے تعلق سے مغرب اور رجعت پسند عرب حکومتوں کی مشترکہ سازش جاری ہے۔ امریکہ اور اس کے مغربی نیز عرب اتحادی ایک طرف تو شام کے مسئلے کو عالمی سطح پر اٹھا کر عالمی برادری کو اس میں ملوث کرنا چاہتے ہیں، تو دوسری طرف انہوں نے شام میں سرگرم دہشت گرد گروہوں کی مالی اور اسلحہ جاتی امداد کا سلسلہ بھی جاری رکھا ہے۔ یہ ایسی حالت میں ہے کہ شام کے عوام نے ایک بار پھر وسیع پیمانے پر مظاہرہ کر کے بشار اسد کی حکومت کی حمایت اور بیرونی مداخلت کی مخالفت پر زور دیا ہے۔ ملاحظہ فرمائے، اس سلسلے میں ہمارا یہ تبصرہ۔
شام کے عوام نے ایک بار پھر اپنے ملک کے اندرونی معاملات میں غیر ملکی مداخلت کی کھل کر مخالفت کی ہے۔ شام کی خبر رساں ایجنسی سانا کے مطابق سینکڑوں کی تعداد میں شامی شہری بدھ کی شام دارالحکومت دمشق اور نواحی شہر حسکہ کی سڑکوں پر آئے اور انہوں نے صدر بشار اسد کے اصلاحات کے پروگرام کی حمایت میں نعرے لگائے۔ مظاہرین اپنے ملک کے اندرونی معاملات میں غیر ملکی مداخلت کے خاتمے اور بیرونی سازشوں کا ڈٹ کر مقابلہ کرنے کا مطالبہ کر رہے تھے۔ دمشق کے سبا بہرات اسکوائر پر ہونے والے اس مظاہرے میں تیونس اور لبنان کے بعض سیاسی رہنما بھی شریک تھے۔ تیونس کی متحدہ ڈیموکریٹ پارٹی کے مرکزی احمد انوبلی نے اس موقع پر کہا کہ شام بیرونی سازشوں کے مقابلے میں عرب دنیا کے اگلے محاذ پر ڈٹا ہوا ہے، اور شام کے عوام پورے عزم کے ساتھ بیرونی دشمن کی سازشوں کو ناکام بنا دیں گے۔ دوسری جانب صدر بشار اسد نے بدھ کے روز اپنے خطاب میں یہ بات زور دے کر کہی ہے کہ ان کی حکومت کو عوام کی حمایت حاصل ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہر ملک کی طاقت کا سرچشمہ عوام ہوتے ہیں، اور شام کے عوام ہمیشہ کی طرح بیرونی سازشوں کو پوری ہوشیاری کے ساتھ ناکام بنا رہے ہیں، اور اپنے ملک سے وفاداری کو انہوں نے ثابت کر دیا ہے۔ شام کے مختلف شہروں میں صدر بشار اسد کی حمایت میں ہونے والے عوامی مظاہرے ایسے حالات میں ہو رہے ہیں جب اغیار سے وابستہ شہر پسند عناصر نے ملک میں خوف و ہراس کا ماحول تیار کر کے عام لوگوں کو دہشت گردی کا نشانہ بنا کر صدر بشار اسد کی حمایت میں عوامی مظاہروں کو روکنے کی کوشش کی ہے۔ شام کے مختلف شہروں میں عوام کے خود جوش مظاہرے اس بات کی دلیل ہیں کہ شام کے عوام بدستور صدر بشار اسد کے حامی ہیں اور دہشت گردوں اور شہر پسندوں سے متنفر اور بیزار ہیں۔ بشار اسد نے ملک کے صدر کی حیثیت سے اپنے انتخاب کے بعد ہی ملک میں اصلاحات کا عزم ظاہر کر دیا تھا، اور اصلاحات کے پروگرام پر اپنے والد کے دور ہی میں عمل درآمد شروع کر دیا تھا۔ بشار اسد نے بیرونی سازشوں کے باوجود ملک میں سیاسی اصلاحات کو اپنے ایجنڈے میں سر فہرست رکھا ہے۔ اصلاحات کا عمل تیز کیے جانے کے عوامی مطالبات کے بعد تقریباً حالیہ ایک برس کے دوران صدر بشار اسد نے عوامی مطالبات پر پوری توجہ دی، تاہم یہ بھی واضح کر دیا کہ وہ اس بات کی ہرگز اجازت نہیں دیں گے کہ بیرونی سازشی عناصر اور ان کے اندرونی اعلی کار موجودہ حالات سے ناجائز فائدہ اٹھاتے ہوئے ملک میں بدامنی پھیلائیں اور ملت کے اتحاد کو نقصان پہنچانے کی کوشش کریں۔ صدر بشار اسد نے اصلاحات کا عمل تیز کرنے کے ساتھ ساتھ ملک کے مختلف علاقوں میں دہشت گردی پھیلانے والے شرپسند گروہوں سے آہنی ہاتھ کے ذریعے نمٹنے کا فیصلہ کیا، جس کے نتیجے میں ان علاقوں میں امن و امان کی صورتحال میں بتدریج بہتری آئی ہے۔ شامی عوام اور حکومت نے بیرونی طاقتوں کی سازشوں کو پوری ہوشیاری کے ساتھ ناکام بنا دیا ہے، اور سازشیں تیار کرنے والے بیرونی عناصر بھی اس کامیابی کا اعتراف کرنے پر مجبور ہیں۔ امریکی وزیر جنگ لیون پینیٹا نے شام کے خلاف امریکہ اور مغربی ملکوں کے سازشی منصوبوں کی ناکامی پر برہمی کا اظہار کرتے ہوئے اعتراف کیا ہے کہ شام کی حکومت بدستور مستحکم ہے۔ دوسری جانب صدر بشار اسد کی حمایت میں ہونے والے خود جوش عوامی مظاہروں نے مغربی حکومتوں کے اس دعوے کی کلئی کھول دی ہے کہ صدر بشار اسد حکومت کرنے کا جواز کھو چکے ہیں۔ ان حقائق کے پیش نظر عالمی ادارے بھی شام کے اندرونی معاملات میں امریکہ، مغربی حکومتوں اور بعض عرب ممالک کے مداخلت پسندانہ اقدامات کی مذمت کرتے ہوئے حکومت شام کے خلاف کسی بھی اقدام میں شرکت سے گریزاں ہیں۔
ہندوستان کے آزاد سینئر صحافی اور ممتاز کالم نویس محمد احمد کاظمی کی گرفتاری کے خلاف ہندوستان کی صحافتی برادری، مسلم دانشوروں اور عوامی حلقوں نے مذمت کی ہے۔ انہیں دہلی پولیس نے صہیونی حکومت کے سفارت خانے کی گاڑی میں دھماکہ کرنے والوں کے ساتھ مبینہ تعاون کے الزام میں گرفتار کیا ہے۔ ہندوستان کی صحافتی برادری اور مسلم رہنماؤں کا کہنا ہے کہ محمد احمد کاظمی کو اسرائیل کی مخالفت اور ملت فلسطین کی حمایت میں مضامین لکھنے اور عالمی مسائل میں ایران کے برحق موقف کی حمایت کی پاداش میں ایک سازش کے تحت دہشت گردی میں ملوث قرار دینے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ اس سلسلے میں ملاحظہ فرمائیں ہندوستان کے ممتاز تجزیہ نگار تسنیم رحمانی کا تبصرہ۔
دیکھیے، انتہائی بدقسمتی کی بات ہے کہ ملک میں اتنے ممتاز عالمی سطح کے صحافیوں کو ہماری سراغ رساں ایجنسیاں بلا وجہ اپنی ناکامی کو چھپانے کے لیے اس قسم کی حرکتیں کر رہی ہیں۔ ہندوستان کی تمام مسلم تنظیموں نے اور صحافیوں کی تنظیموں نے اور دیگر جو انصاف پسند تنظیمیں غیر مسلم حضرات کی بھی ہیں، اس معاملے کی شدید مذمت کی ہے، اور آج کچھ صحافیوں کی تنظیمیں ایک پریس کانفرنس میں حکومت سے ان کی رہائی کا مطالبہ کر رہی ہیں۔ نیز کل کی تاریخ میں ملک کی تمام مسلم تنظیمیں اس کے خلاف ایک پریس کانفرنس کریں گی۔ وزیر داخلہ سے ہم نے ملاقات کا وقت مانگا ہے اور ہم ان سے احتجاج کریں گے کہ فراغ رساں ایجنسیاں جو کام دراصل کرنا چاہتی تھی، کرنا چاہیے انہیں، وہ تو وہ کر نہیں پائی ہیں۔ بے قصور لوگوں کو اور صحافیوں کو اور بڑے لوگوں کو گرفتار کر کے غالباً یہ میسج دینے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ امریکہ اور اسرائیل کے خلاف اس ملک میں جو آوازیں بھی بلند ہوں گی ان کو بزور و زبردستی اسی طریقے سے بند کر دیا جائے گا۔ خوف و ہراس کا ماحول پیدا کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ یہ بہت بڑا مسئلہ ہے اس ملک میں اس وقت۔ 2004 سے لے کے اب تک یو پی اے کی جب سے سرکار ہے اور اس سرکار نے اپنی خارجہ پالیسی میں تبدیلی کی ہے، ملک کے 1-2-3 اور ملٹری ایگریمنٹ جو امریکہ کے ساتھ ہوئے اور جو اسرائیل کے ساتھ میوچول ایگریمنٹ ہوا تھا اڈوانی صاحب کے ذریعے کہ وہ وساد اور آئی بی بل کے وہ پریکٹس کیا کریں گے، اس کے بعد یہ حرکتیں بڑھی ہیں۔ اور اس کا بڑا سیدھا مطلب یہ ہے کہ صہیونی اور استعماری کی جو لابیز مسلمانوں کو پوری دنیا میں حاشیے پہ کھڑا کر دینا چاہتی ہیں، وہ لابیز ہندوستان میں بھی کام کر رہی ہیں اور ہندوستان کے مسلمانوں کو بلا قصور مورد الزام ٹھہرا کر انہیں ملک کے دیگر اقوام کے مقابلے میں تنہا یکا و تنہا کھڑا کرنے کی یہ ایک گہری سازش ہے، جس پر ہمیشہ یہاں تب سے اب تک احتجاج کیا جاتا رہا ہے۔ ہم نے پچھلے دنوں بھی وزیر داخلہ سے یہ مطالبہ کیا تھا کہ وہ لوگ جو بے قصور ثابت ہوئے ان کو ان کے ریہیبلیٹیشن اور بازآباد کاری کے اقدامات کی ذمہ داری خود سرکار لے، لیکن سرکار نے اب تک اس جانب کوئی پیش قدمی نہیں کی ہے۔ ہم اس مطالبے کو شدت کے ساتھ اب پھر دہرا رہے ہیں کہ سرکار بازآباد کاری کے انتظامات کرے۔ نیز وہ دوسری فورسز جو غیر مسلم طاقتیں ان معاملات میں اکثر گرفتار ہوئی ہیں ان کو نظر انداز کیا جاتا رہا ہے اور ان کے خلاف جو کیسز ہیں انہیں انتہائی ہلکا بنا کے عدالتوں میں پیش کیا گیا ہے، ہم اس کے خلاف بھی احتجاج کر رہے ہیں۔ ایک تیسری بات یہ ہے کہ اس ملک میں جو ابھی اسرائیل کا ایمبیسی کے باہر 13 فروری کو واقعہ پیش آیا، اس سے پہلے موساد کے چیف نے ہندوستان کا دورہ اسی ہفتے کیا تھا اور دو ہسبینڈ اینڈ وائف جو اسرائیل کے ٹورسٹ ویزا پہ یہاں کیرل میں مقیم تھے وہ گرفتار ہوئے تھے، ان کے پاس جو ہے اسلحہ برآمد ہوا تھا، خاموشی کے ساتھ ان کو ڈیپورٹ کر دیا گیا۔ اس کے علاوہ کئی ٹورسٹ یہاں سے اسرائیلی گرفتار کیے جا چکے ہیں کئی مرتبہ، جن کے پاس اسلحہ برآمد ہوتا ہے مگر سرکار چپ چاپ ان کو ڈیپورٹ کر دیتی ہے۔ ہم ہوم منسٹری سے سوال کر رہے ہیں کہ اس سلسلے میں جو حقائق ہیں वो आवाम के सामने क्यों नहीं लाए जाते और इन लोगों की सही तहकीक करके इनके खिलाफ जुर्म आवाम को क्यों नहीं बताए जाते, क्यों चुपचाप उन्हें डिपोर्ट कर दिया जाता है और इसके बरक्स बेकसूर और बाइज्जत मौजज लोगों को गिरफ्तार करके उनके कैरियर को तबाह करने की कोशिश की जाती है।
अफगानिस्तान में गुज़श्ता दिनों एक कार्रवाई में 6 बरतानवी फौजी हलाक कर दिए गए। इस वाकये पर जहां बरतानवी अवाम ने एक बार फिर अपनी हुकूमत पर अफगानिस्तान से अफवाज वापस बुलाने के लिए दबाव बढ़ा दिया है, वहीं बरतानवी वजीर आजम ने कहा है कि अफगानिस्तान में बरतानवी फौजी 2014 तक बाकी रहेंगे। मुलाहिजा फरमाए हमारा ये तज़िया।
बरतानवी वजीर आजम डेविड कैमरॉन ने एक बार फिर ये बात जोर देकर कही है कि उनके मुल्क के फौजी सन 2014 तक अफगानिस्तान से बाहर निकल जाएंगे। बुध के रोज पार्लियामेंट के खुले इजलास में बयान देते हुए डेविड कैमरॉन ने कहा कि अफगानिस्तान में 6 फौजियों की हलाकत के अफसोसनाक वाकये से अफगानिस्तान में बरतानिया के फौजी मिशन पर कोई असर नहीं पड़ेगा और हमारे फौजी सन 2014 के अख्तितम तक अफगानिस्तान में बाकी रहेंगे। कैमरॉन ने मजीद कहा कि अफगानिस्तान के हवाले से हमारा प्रोग्राम पूरी तरह वाज़ेह है और हम सिक्योरिटी की जिम्मेदारियां बतदरीज अफगानिस्तान की पुलिस और फौज के हवाले करेंगे ताकि हमारे फौजी बड़े मुनज्जम तरीके और तयशुदा प्रोग्राम के मुताबिक अफगानिस्तान से बाहर निकल सकें। बरतानवी वजीर आजम ने यह बयान ऐसे वक्त में दिया है जब कराइन और शवाही से इस बात की निशानदही होती है कि अमरीका और नेटो जिनके तकरीबन 1.5 लाख फौजी इस वक्त अफगानिस्तान में मौजूद हैं, अफगानिस्तान पर कब्जा जारी रखने का तहैया कर चुके हैं और कोशिश कर रहे हैं कि कम से कम खर्च के साथ ये कब्जा जारी रहे। दूसरी यानी फ्रांसीसी और बरतानवी फौजियों की हलाकतों के वाकयात ने इन मुल्कों के हुक्मरानों को राय आम्मा के शदीद दबाव से दोचार कर दिया है। यही वजह है कि अफगानिस्तान में गैर मुल्की फौजियों की हलाकतों का कोई भी वाकया पेश आता है तो बरतानिया और फ्रांस जैसे ममालिक राय आम्मा के दबाव से बचने के लिए अफगानिस्तान से अपने फौजियों के इनखला की बात करना शुरू कर देते हैं। ये बातें ऐसे वक्त में की जाती हैं जब अफगानिस्तान पर कब्जे को 10 साल से ज्यादा का अरसा गुजर जाने के बावजूद काबिज कुव्वतों ने इस मुल्क की पुलिस और फौज को लाजमी तरबियत और आलात फराहम करने की गरज से कोई ठोस इकदाम नहीं किया है। इसका वाज़ेह मतलब यह है कि काबिज कुव्वतें सलामती के लिहाज से अफगानिस्तान को बदस्तूर अपना दस्ते निगर बनाए रखने की कोशिश कर रही हैं। इस तनाजुर में अगर देखा जाए तो सन 2014 तक फौजें वापस बुलाने के मुतालिक बरतानवी वजीर आजम का बयान अफगानिस्तान की राय आम्मा को धोखा देने के मुतरादिफ है। मगरबी ममालिक खास तौर पर अमरीका और बरतानिया इस बात की कोशिश करते चले आ रहे हैं कि हुकूमत अफगानिस्तान पर सिक्योरिटी मुआहदे मुसल्लत करके अपनी फौजी मौजूदगी की शक्ल बदलकर ही सही अफगानिस्तान पर कब्जा बरकरार रखा जाए। अफगानिस्तान में अमरीकी वजारत दिफा की फौजों के बजाय CIA के एहलकार तैनात किए जाने के अमरीकी मनसूबों से मुतालिक सामने आने वाली खबरें भी इसी पस मंजर में काबिल गौर हैं, क्योंकि अमरीका और बरतानिया अफगानिस्तान में मुश्तरका अहदाफ पर काम कर रहे हैं, लिहाजा इस बात का इम्कान मुश्किल है कि ये ममालिक अफगानिस्तान पर अपना कब्जा खत्म कर देंगे। अलबत्ता 19वीं सदी के आखिर में अफगानिस्तान में बरतानिया को जिस जिल्लत आमेज शिकस्त का सामना करना पड़ा था उसके पेश नज़र हुकूमत बरतानिया ने अफगानिस्तान के हवाले से इंतहाई घिनौनी पॉलिसियों को अपना रखा है ताकि इस मुल्क में साम्राज्य दौर की रुसवाई का सामना न करना पड़े, क्योंकि अंग्रेजों को अच्छी तरह मालूम है कि अफगान अवाम में साम्राज्यत और अगयार के खिलाफ कितने शदीद जज्बात पाए जाते हैं और उन्हें यह भी मालूम है कि इस मुल्क पर कब्जा तादेर जारी रखना मुमकिन नहीं है। यही वजह है कि लंदन और वाशिंगटन इस बात की कोशिश कर रहे हैं कि नए हथकंडों के जरिए अफगानिस्तान पर अपना कब्जा जारी रखा जाए और इस मकसद के लिए सिक्योरिटी मुआहदा मुसल्लत करने और फौजियों के बजाय CIA और MI6 के एजेंटों को तैनात करने की बातें की जा रही हैं।
नाज़रीन, गुज़श्ता दिनों हिंदुस्तान के सीनियर सियासतदान और मरकजी वजीर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने तेहरान का सरकारी दौरा किया। उन्होंने अपने इस दौरे में ईरान और हिंदुस्तान की देरीना दोस्ती के इस्तेहकाम पर जोर दिया, इलाके में क़याम अमन में ईरान के किरदार को अहम करार दिया, पुरअमन एटमी टेक्नोलॉजी को ईरान का मुसलमा हक बताया और ईरान के एटमी सियासतदानों की टारगेट किलिंग की मजम्मत की। उन्होंने अपने इस दौरे में मुख्तलिफ ईरानी रहनुमाओं से मुलाकात की और बाहमी रवाबित में फरोग की राहों का जायजा लिया। सदर डॉक्टर महमूद अहमदी नजाद ने उनसे मुलाकात में इस बात पर जोर दिया कि तेहरान और नई दिल्ली के मफादात और दुश्मन मुश्तरक हैं। सदर ममलकत ने तसल्लुत पसंद ताकतों के मुकाबले में ईरान और हिंदुस्तान दोनों मुल्कों की इस्तेकामत और मुजाहमत पर जोर दिया। इस तनाजुर में आज हमने प्रोग्राम जाविये निगाह में ईरान हिंद ताल्लुकात पर गुफ्तगू का फैसला किया और इसके लिए हमने स्टूडियो में आने की जहमत दी है सियासी उमूर के माहिर साजिद रिजवी साहब को। तो आइए उनसे गुफ्तगू का आगाज करते हैं। साजिद साहब, स्टूडियो में आपका खैर मकदम है। सबसे पहले तो हम ईरान और हिंदुस्तान के जो मौजूदा रवाबित की सतह है उसके बारे में आपकी नजर जानना चाहेंगे।
बहुत शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस्लामी जमहूरिया ईरान और हिंदुस्तान के ताल्लुकात जो हैं बहरहाल एक तवील माजी रखते हैं, तारीखी ताल्लुकात हैं, तारीखी रवाबित हैं और दोनों मुल्कों की अक्वाम के दरमियान, कौमों के दरमियान जो देरीना रवाबित रहे हैं उसके असरात जो हैं वो यकीनी तौर पर जो हुकूमतों की पॉलिसियां हैं उन पर भी मुरतब होते हैं। मजमूई तौर पर जो है वो ताल्लुकात मतलूब सतह पर हैं और इसका इजहार जो है वो दोनों मुल्कों के हुक्काम के जो बयानात हैं उनमें हमें नजर आता है और देखने को मिलता है। मादूद एक आध दो मवालिद के अलावा इस्लामी जमहूरिया ईरान और हिंदुस्तान के जो रवाबित हैं, ताल्लुकात हैं, आलमी सतह पर जो मसाइल हैं उसमें भी जो मुश्तरका नजर रखते हैं और इलाकाई ताल्लुकात की या इलाकाई मामलात में भी जो है दोनों मुल्कों का मौकिफ जो है बज़ाहिर एक नजर आता है और बहुत ही कम ऐसे मौके आए हैं कि जहां दोनों मुल्कों की हुकूमतों की जो मसाइल हैं या पॉलिसियां हैं उनमें कहीं कोई तजाद या टकराव देखने में आया हो। और इस्लामी इनकलाब की कामयाबी के बाद इसमें शक नहीं कि इस्लामी जमहूरी ईरान की जो खारजा पॉलिसी रही है उसमें पड़ोसी ममालिक के साथ, इलाकाई ममालिक के साथ, तीसरी दुनिया के मुल्कों के साथ, तरक्की पजीर मुल्कों के साथ ताल्लुकात को बढ़ावा देना, उनसे रवाबित को मजबूत करना, उनके साथ तिजारती लेन देन की सतह को जो है वो आला सतह तक ले जाना जो है वो इस्लामी जमहूरी ईरान की खारजा पॉलिसी का जो है वो जुज है और हिस्सा है और हिंदुस्तान उसमें जो है सर फहरिस्त है।
जी, बहुत बहुत शुक्रिया रिजवी साहब। और नाज़रीन, हमारे दिल्ली स्टूडियो में मौजूद हैं हिंदुस्तान के सीनियर सहाफ़ी और मुमताज़ तज़िया निगार शकील शमसी साहब। शमसी साहब, अस्सलाम वालेकुम।
वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह व बरकात।
शमसी साहब, ईरान और हिंदुस्तान के रवाबित की मौजूदा सतह से आप किस हद तक मुतमईन हैं?
देखिए, खुदा का शुक्र है कि हिंदुस्तान की हुकूमत पर बेइंतहा दबाव होने के बावजूद हिंदुस्तानी हुकूमत ने इस बात का इजहार नहीं होने दिया अभी तक कि वो ईरान के साथ ताल्लुकात को कम करना चाहती है, उसकी सतह में कमी लाने लेकर आना चाहती है और बल्कि बढ़ाने की तरफ आमादगी है। एक हिंदुस्तान जैसे मुल्क के ऊपर जिस पर अमरीका का दबाव है, जिस पर इसराइल का दबाव है, उसकी जानिब से ये कोशिश हो रही है लगातार कि ईरान के साथ ताल्लुकात बेहतर बनाया जाए, सिफारती भी, तिजारती भी और मुआशी जितने भी हमकारी है उनके साथ बढ़ाई जाए उसको। और अभी आपको मालूम है कि कुछ ही दिन पहले वहां पर फारूक अब्दुल्ला साहब गए और उन्होंने कई दिन रहे वहां और मुलाकातें की और उन्होंने कहा कि हम मुख्तलिफ जहतों में हिंदुस्तान के साथ, ईरान के साथ हिंदुस्तान चाहता है अपनी तिजारत को बढ़ाना। इस वक्त हिंदुस्तान जो है वो $12 बिलियन का तेल दरामद करता है हिंदुस्तान ईरान से और हिंदुस्तान से जो सामान जाता है उसकी $2 बिलियन है, जिससे एक बहुत बड़ा गैप है दोनों मुल्कों के बीच में। और इस गैप को पुर करने के लिए बहुत दिनों से कोशिश की जा रही है कि हम कैसे पुर करें इसको। और यहाँ की जो ऑर्गेनाइजेशन है फेडरेशन ऑफ एक्सपोर्ट्स की, उसने कहा है, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इंडियन एक्सपोर्ट फेडरेशन, उसने ये कहा है कि हम एक वक्त भेज रहे हैं हिंदुस्तान से, कल जाना है उसको, गालिबन 10 तारीख से 14 तारीख तक उसको दौरा करना है ईरान में। और वो जो वक्त जाएगा वो मुख्तलिफ चीजों में देखेगा कि कितना क्या क्या में क्या क्या इम्कान हैं, किस चीज की हिंदुस्तान से तजारत की जा सकती है, क्योंकि हिंदुस्तान से जो ईरान सामान जा रहा है वो बहुत कम है। और जब से ईरान और हिंदुस्तान के दरमियान रुपए के जरिए से एक्सचेंज पर आमादगी का इजहार हुआ है और यूको बैंक ने उसका इंतजाम कर दिया है कि यूको बैंक में रुपया जमा होगा और वहां
जी दिल्ली से राबता कुछ मुनकता हो गया। रिजवी साहब, इस वक्त जो हिंदुस्तान और ईरान के दरमियान जो अहम तरीन तजारत है वो तेल की तजारत है और तेल के ताल्लुक से अगर गुज़श्ता दिनों की खबरें आपके पेश नजर हों तो अमेरिका का ज्यादा दबाव हिंदुस्तान पे नजर आता है कि वो ईरान से तेल की खरीदारी बंद कर दे। हिंदुस्तान अगरचे मुसलसल वहां से बयान ये आ रहे हैं कि न सिर्फ ये कि हम तेल की खरीदारी बंद नहीं करेंगे बल्कि उसकी सतह बुलंद करेंगे, इसके बावजूद अमेरिका के वजीर खारजा का भी बयान है और दीगर लोगों का कि इस सिलसिले में उनके हिंदुस्तान से मुजाकिरात जारी हैं और वो कोशिश कर रहे हैं कि हिंदुस्तान को इस बात पर राजी कर ले कि वो ईरान से तेल लेना बंद कर दे और इस तेल की जो कमी हो वो दूसरी जगहों से पूरी करे। सऊदी अरब ने भी इस सिलसिले में ईरान को यकीन दहानी हिंदुस्तान को यकीन दहानी कराई है कि ईरानी तेल की कमी वो पूरी करेगा। इस सिलसिले में जो अमेरिका ने तेल के सिलसिले में खास तौर पर हिंदुस्तान पर जो तवज्जो मरकूज कर रखी है और पूरी कोशिश यह है कि हिंदुस्तान ईरान से तेल लेना बंद कर दे, इसकी क्या वजह है? जापान भी तो ईरान से तेल ले रहा है और चीन है, दूसरे ममालिक भी हैं।
देखें, इस वक्त तेल और गैस दो ऐसे जराए हैं कि जिस पर जो है वो हिंदुस्तान का इन्हिसार है, इतनी बड़ी आबादी के नाते उसकी कमी को पूरा करना, उन लोगों की जरूरियात को पूरा करना। और इस वक्त इस हवाले से जो है वो अमेरिका का मुसलसल जो है पाकिस्तान पर भी दबाव रहा है और हिंदुस्तान पर भी रहा है। लेकिन हिंदुस्तान जो है वो मुसलसल खासतौर पर तेल के मामले में आकर जो है हिंदुस्तान ने इस बात का सरीहन जो है वो ऐलान किया है कि वो अपनी तेल की जो ईरान से तरसील है उसको हरगिज कम नहीं करेगा और ये अमल जो है वो जारी रहेगा। ज़ाहिरन वजह यह है कि हिंदुस्तान एक तेल की बहुत बड़ी मंडी है, इस इलाके में जो है वो बहुत बड़ी ताकत है, एक बड़ी जमहूरियत है और हिंदुस्तान की ताकत को ईरान से अलग थलग करने के लिए और इस इलाके में जो वो रीजन बनाना चाहते हैं और जो इक्तिसादी जो तंजीमें जो वजूद में आ सकती हैं और आमतौर पर जो मुबस्सिरीन ख्याल जाहिर करते हैं कि अगर चीन, हिंदुस्तान और ईरान मिलकर जो है एक ब्लॉक बना लें, एक इक्तिसादी, माशी और सियासी ग्रुप बना लें तो इस खित्ते में जो है वो अमेरिका का असर रसूख जो है वो कम हो सकता है। अमेरिका जो है वो एक तरफ चीन को अलग थलग कर देना चाहता है और दूसरी तरफ ईरान के साथ जो उसका दुश्मनी चली आ रही है पिछले 33 वर्षों से उसका वो इंतकाम लेना चाहता है कि ईरान भी जो है वो इस इलाके से कटर है और चीन को भी जो है अलग थलग कर दिया जाए, हिंदुस्तान को अलग रखकर। लेकिन जैसा कि आपने भी बताया और अब तक की जो इत्तलात हैं और डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला का जो दौरा है उसमें जो बातें की गई हैं और उन्होंने जिस अंदाज में जो है इस्लामी जमहूरी ईरान के मौकिफ की हिमायत का खुलकर ऐलान किया है उससे अंदाजा होता है कि हिंदुस्तान जो है वो ईरान के साथ अपने जो तेल का खासतौर पर जो लेन देन है उसमें किसी किस्म की कमी जो है वो नहीं करेगा और अपने मौके पर डटा रहेगा।
जी शमसी साहब, आपसे राबता हमारा मुनकता हो गया था।
जी फरमाइए।
जी तेल के सिलसिले में खास तौर पर हिंदुस्तान से जो खबरें आ रही हैं उसमें एक तरफ तो हिंदुस्तानी जो रहनुमा हैं, हिंदुस्तानी लीडरान हैं, उनके बयानात हैं और कुछ इकदाम अमली तौर पर भी किए गए जिसकी तरफ आपने इशारा किया है कि जो कीमतों की अदायगी में जो मुश्किल पेश आ रही थी ईरान के मरकजी बैंक पर पाबंदी की वजह से, उसका हल ये निकाला गया है कि रुपए में यूको बैंक में एक अकाउंट खोल दिया गया है और वहां से उसके जरिए से अदायगी का इंतजाम किया गया है। सऊदी अरब ने अभी गुज़श्ता दिनों हिंदुस्तान को पेशकश की थी कि ईरानी तेल की कमी को वो पूरा करेगा। ये सब बातें अपनी जगह पर, लेकिन इसी के साथ एक खबर ये भी है कि हिंदुस्तान की बाज कंपनियों ने ईरान से तेल की खरीदारी कम करने का फैसला किया है, इसमें कहां तक हकीकत है?
देखिए, अभी इस तरीके की खबरें अभी तक तो यहां पर हो सकता अंदर अंदर ऐसी हो रही हो कोशिश, लेकिन अभी तक हम लोगों तक इसकी इत्तला नहीं आई है कि ऐसा हुआ हो कुछ। बहरहाल हो सकता है क्योंकि प्रेशर बहुत ज्यादा है, जो यहाँ की कंपनियां हैं उनको अमेरिका मुसलसल धमकाता है क्योंकि उनके जाहिर बात है मुफादात अमेरिका से भी वाबस्ता है और अमेरिका में भी बिजनेस कर रहे हैं वो लोग, तो प्रेशर इतना जबरदस्त है कि हिंदुस्तान जैसे तरक्की पदीर ममालिक का झेल पाना उस मामले को बहुत मुश्किल हो रहा है। इसराइल का भी उन पर प्रेशर है, अमरीका का भी बहुत ज्यादा प्रेशर है, लेकिन उसके बावजूद हिंदुस्तान की तरफ से ये कहा जाना लगातार बहुत बड़ी बात है और हिंदुस्तानी हुकूमत की तरफ से कि हम ईरान के साथ ताल्लुकात को सही रखेंगे, नॉर्मल रखेंगे और अमरीकी प्रेशर में नहीं आएंगे। ये जबानी तौर पर भी कहना ये मुश्किल है इस दौर में, क्योंकि जबकि अमरीका से बहुत बड़ा हिंदुस्तान की वाबस्तगी है और हिंदुस्तान से उनके मुआशी मफादात वाबस्ता है, लेकिन इस सिलसिले में हिंदुस्तान का मौकिफ जो है वो है क्लियर है, और उसने आप कल देखिए कल है कि यहां से वब जाने वाला है, अभी तक तो वो जा रहा है वब, और वो वहां जाकर बातचीत करेगा और हिंदुस्तान से एक्सपोर्ट की गुंजाइशें वहां देखेगा, क्या क्या गुंजाइशें किस किस्म की। तो बहरहाल प्रेशर तो है ही, हर आदमी जानता है कि अमरीका तो हर तरीके से दबाता है, वो हिंदुस्तान को किसी बहाने से, और फिर उसके बाद वो एटमी जो उनका पहले आपको मालूम है कि उसको लेकर उसने कितना एटमी प्रोग्राम के सिलसिले में हिंदुस्तान को कितना प्रेशराइज किया और मुख्तलिफ चीजों, क्योंकि वो ये चाहता है, अमरीका की सबसे बड़ी ख्वाहिश यह है कि हिंदुस्तान अमरीका के ब्लॉक में चला जाए एकदम और इसराइल की खुलकर मदद करे। अभी तक हिंदुस्तान की हुकूमत जो है इसराइल के साथ जो भी कारोबार वो होता है उसको बहुत खुफिया तौर पर अंजाम देती है, ताकि क्योंकि मुसलमानों की एक बहुत बड़ी तादाद यहां मौजूद है और मुसलमान हिंदुस्तान के साथ इसराइल के रवाबित को पसंद नहीं करती, ये बात हुकूमतें हिंद अच्छी तरीके से जानती है। और इत्तेफाक ऐसा कुछ है भी कि जब से हिंदुस्तान की, इस बारे में मैं तारीफ करूंगा कि हिंदुस्तान ने 1947 से लेकर और 1992 तक 1992 तक इसराइल से सिफारती ताल्लुकात कायम नहीं किए, ये एक बहुत बड़ी बात थी। और लेकिन जब कुछ अरब मुल्कों ने मान लिया, जब बहुत से मुस्लिम ममालिक ने उसको मान लिया, तो हिंदुस्तान ने भी उसका सिफारतखाना खोलने की इजाजत दे दी। और जब से यहां इसराइल का सिफारतखाना खुला है, हर किस्म की परेशानियां, उसके बाद से दहशतगर्दी कितनी बढ़ गई, 93 में आप देखिए बॉम्बे ब्लास्ट हुए, तरह तरह के वाकयात हुए, जब से यहां इसराइल की एम्बेसी आई और इसराइल के साथ हिंदुस्तान के ताल्लुकात बढ़े हैं, तब से कोई ना कोई परेशानी खड़ी है। इस बात को हिंदुस्तानी हुकूमत नहीं समझ रही, लेकिन बहरहाल 1992 तक हिंदुस्तान ने फिलिस्तीनियों का भरपूर तरीके से साथ दिया, आज भी हुकूमत कहती है हम उनके साथ हैं, लेकिन उसके साथ साथ उसने इसराइल के साथ भी दोस्ती का हाथ बढ़ा दिया, जो हम समझते हैं कि सबसे बड़ी मसले की जड़ है यहां पर। और उसी की वजह से अमरीका जो है हिंदुस्तान को प्रेशराइज कर रहा है कि वो ईरान से अलग हो जाए। अब ईरान से जो अमेरिका की दुश्मनी है या इसराइल की दुश्मनी है, वो सब जानते हैं कि कोई जाती वजह तो है नहीं ईरान से लड़ाई की या ईरान से दुश्मनी की। ईरानियों की बस एक ही खता है कि वो मजलूमियत का साथ देने की बात करते हैं, वो फिलिस्तीनियों की बात करते हैं। अगर वो फिलिस्तीनियों के साथ हमदर्दी की बात करना छोड़ दें तो इसराइल के साथ उनका क्या है पर इख्तलाफ है, किस चीज का भाई, कोई ना मार्केट का टकराव है ना बाजार में कोई शेयर है। लेकिन बहरहाल ये मौजू से अलग की बात है, लेकिन इस वक्त जो हिंदुस्तान में जो कुछ हो रहा है उसमें इसराइल का बहुत बड़ा हाथ है। हिंदुस्तान की गवर्नमेंट को इस तरीके से प्रेशराइज करने की कोशिश की जा रही है, और मैं मुबारकबाद देता हूं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को कि वो कम से कम जबानी तौर पर ही कही रही है ये बात कि हम ईरान के साथ ताल्लुकात को मुनकता नहीं होने देंगे और ईरान के साथ ताल्लुकात अच्छे रखेंगे। अभी अपने फारूक अब्दुल्ला साहब के जो दौरे में भी ये बातें आई सामने, और जो कल यहां से वक्त जा रहा है, हमें उम्मीद है कि वो हिंदुस्तान ईरान के साथ नए मुआहदे करेगा और मुख्तलिफ जहतों में यहां से जो सामान अभी तक जो ईरान यूरोप से सामान लेता है या दूसरे ममालिक से लेता है वो हिंदुस्तान से उसको आसानी के साथ मिल सकता है, खासकर ये पोल्ट्री के प्रोडक्ट जो हैं या जो गोश्त वगैरह है ये हिंदुस्तान से, और भी चीजें ऐसी हैं जिसमें ईरान के लिए यहां से एक्सपोर्ट हो सकता है। तो हिंदुस्तान और ईरान एक नेचुरल पार्टनर्स हैं। आप हिंदुस्तान की जबान में फारसी की आमदिश पाएंगे, हर जबान में, चाहे वो मराठी हो चाहे गुजराती हो चाहे हिंदी हो, यहां के लोगों से इतने पुराने रवाबित हैं ईरान के रहे हैं कि जो सदियों पर मोहित हैं, तो उनको तोड़ पाना हिंदुस्तानी अवाम के लिए मुमकिन नहीं। और हिंदुस्तान के लोग, सिर्फ मुसलमानों को मैं नहीं कह रहा हूं, हिंदुस्तान के गैर मुस्लिम भी ईरान से मोहब्बत करते हैं और उनको पसंद करते हैं, और ईरान की यहां जो जिस तरीके की सकाफत के नमूने अभी तक दिखाई पड़ते हैं, ईरानी फनकारों के जो नमूने दिखाई पड़ते हैं ताजमहल की शक्ल में और दूसरी इमारतों की शक्ल में, उसको अहले हिंद पसंद करते हैं और इसी वजह से वो ईरान को दोष रखते हैं। और इसलिए किसी भी हुकूमत के बारे में कोई भी जमहूरी हुकूमत ये फैसला हिंदुस्तान में शायद ही कभी कर सके कि वो ईरान के साथ ताल्लुकात मुनक़ता कर लेगी, कोई मुझे नहीं लगता कैसा कर पाएगी, क्योंकि यहां के लोग नहीं चाहते, यहां के अवाम जो है वो ये नहीं चाहते कि हम अमरीकी ब्लॉक में चले जाएं। अमरीका के खिलाफ यहां एक बहुत बड़ी लोग हैं, बड़ी बड़ी तादाद में लोग हैं जो अमरीका को पसंद नहीं करते और जानते हैं कि अमरीका की दादागिरी इस इलाके में जारी है और उसको हिंदुस्तान की हुकूमत को रेजिस्ट करना चाहिए, और इसीलिए हुकूमत जो है यहां का जानती है कि मिजाज, क्योंकि मुसलमान तो सदरसद अमरीका के खिलाफ है, उसके अलावा भी जो बड़ी तादाद में अहले हनूद हैं या दूसरी मजहबें हैं या दूसरी अकवाम हैं वो भी अमरीका को नापसंद करते हैं उसकी दादागिरी की वजह से। जी
साजिद साहब, अभी डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला से सदर मुमलकत की जो मुलाकात थी, جس طرف اشارہ کیا ہے کہ امریکہ کے مقابلے میں ہندوستانی عوام کی خواہش یہ ہے کہ ہندوستان کو ریزسٹ کرنا چاہیے، مزاحمت کرنی چاہیے. اسی بات پر صدر مملکت ڈاکٹر محمود احمدی نژاد نے بھی زور دیا ہے، اور انہوں نے یہ کہا کہ ہندوستان اور ایران کے دشمن اور ان کے مفادات مشترک ہیں، اور سامراجی طاقتوں کے مقابلے میں دونوں کو مل کے مزاحمت سے کام لینا چاہیے.
بالکل بالکل، جیسے ڈاکٹر احمدی نژاد نے کہا، اور اس طرف ڈاکٹر جناب شکیل شمسی صاحب نے بھی اپنے گفتگو میں اشارہ کیا کہ ہندوستان کے اور ایران کے جو تعلقات ہیں تاریخی ہیں، عوامی سطح پر ہیں، بہت مضبوط ہیں، اور اس میں کوئی فرق نہیں کرتا کہ ہندو ہو یا مسلم ہو، سکھ ہو یا دیگر اقوام، سب کے سب جو ہیں وہ قومی سطح پر جو ہے اسلامی جمہوریہ ایران کے کلچر سے، فرہنگ سے، ثقافت سے جو ہے وہ آگاہ ہیں، واقف ہیں، اس کو پسند کرتے ہیں، اور دونوں کے بہت ساری چیزیں جو ہیں ان میں اشتراک بھی جو ہے وہ دیکھنے میں آیا اور پایا جاتا ہے، اور یہ تعلقات آج کے نہیں صدیوں پر جو ہیں وہ محیط ہیں. اور ہندوستانی اسلامی جمہوریہ ایران کی خارجہ پالیسی، خاص طور پر اسلام انقلاب کی کامیابی کے بعد، جیسے کہ میں نے شروع میں کہا، بالکل واضح ہے، اور تیسری دنیا کے ممالک کے ساتھ، ترقی پذیر ممالک کے ساتھ، اور اس خطے کے ممالک کے ساتھ خاص طور پر جو ہے اس میں دوستی اور استحکام جو ہے اس کو ترجیح جو ہے وہ دی جاتی ہے. اب یہ حکومت ہندوستان کے سوچنے کا کام ہے کہ وہ اتنی بڑی جو ہے وہ جمہوریت ہے، اتنی بڑی طاقت ہے اس علاقے میں، اور عالمی سطح پر بھی اس نے جو ہے وہ اپنا سیاسی، معاشی اور جو ٹیکنالوجیکل استحکام ہے اس کو اس نے منوا لیا ہے. تو وہ اس قسم کے دباؤ میں کہ اسرائیل کے دباؤ میں آ جائے، امریکہ کے دباؤ میں آ جائے، ان کے پریشر میں آ جائے، تو یقیناً ان کا پریشر ہے، اور بہت زیادہ جو ہے وہ ہندوستان کے حکومت کے مفادات بھی جو ہیں ان کے ساتھ تعلقات پر ہیں، لیکن اس کے راستے بھی موجود ہیں، اس کی راہ بھی موجود ہیں. اسلامی جمہوریہ پچھلے 33 برسوں سے اقتصادی لحاظ سے، سیاسی لحاظ سے یورپ اور امریکہ کے جو ہے دباؤ میں ہیں، بائیکاٹ میں ہیں، اور یہ بائیکاٹ جو ہے بعض اوقات بہت ہی جو ہے وہ شدید ہو جاتا ہے، جیسے کہ پچھلے ایک سال سے ہے. لیکن ملت ایران، ایرانی حکومت، ایران کا انقلاب، ایرانی اقدار جو ہیں وہ اپنی جگہ موجود ہیں، ڈٹی ہوئی ہیں، اور یہ مثال ہے ہندوستان جیسے ایک بہت بڑے ملک کے لیے کہ جو آبادی کے لحاظ سے بھی اور فوجی طاقت کے لحاظ سے بھی اور معاشی حوالے سے بھی جو ہے وہ اپنے آپ کو سنبھالا دے سکتا ہے. اور ان طاقتوں کا کہ جو ان کی جو گیدڑ بھپکیاں ہیں، ان کی جو چالاکیاں ہیں، ان کی جو مکاریاں ہیں، ان سے اپنے آپ کو جو ہے وہ نکال سکتا ہے. اور اس میں کوئی شک نہیں کہ ہندوستان کے مفادات جو ہیں وہ اسی میں ہیں، اور کہ وہ علاقے کی اقوام کے ساتھ جو ہے وہ مل جل کر جو ہے وہ رہے، اور ایران جو ہے تیل کی، گیس کی، اس کی جو بنیادی ترین ضروریات ہیں جو یورپ اور امریکہ کے مقابلے میں انتہائی سستے داموں جو ہیں اس کو فراہم کر سکتا ہے، اس کی ضروریات کو دور کر سکتا ہے، اس کی صنعتوں کو چلا سکتا ہے، وہ ایران ہے.
بہت بہت شکریہ شمسی صاحب. جناب ڈاکٹر فاروق عبداللہ نے صدر مملکت ڈاکٹر محمود احمدی نژاد سے ملاقات میں جو ایک اہم بات کہی ہے وہ ایران کے ایٹمی پروگرام سے تعلق رکھتی ہے. انہوں نے ایران کے پرامن ایٹمی پروگرام کی حمایت کی، اور پرامن ایٹمی ٹیکنالوجی کے حصول کو ایران کا حق قرار دیا، اور اسی کے ساتھ ایران کے ایٹمی سائنسدانوں کی ٹارگیٹ کلنگ کو دہشت گردی قرار دیا اور اس کی مذمت کی. ایٹمی پروگرام کے تعلق سے ان کے اس بیان کو سرکاری سطح پر ضرور سراہا گیا ہے، لیکن عوامی سطح پر ہندوستان کے ماضی کا جو کردار رہا ہے اس کے پیش نظر تھوڑی سی بے اعتمادی پائی جاتی ہے. اس بارے میں آپ کیا کہیں گے؟
جی میں کہنا چاہوں گا کہ کوئی ایسا ہندوستان کا معاملہ یہ ہے کہ ہندوستان نے آئی ایم ای ایران کے خلاف ووٹ دیا، اور اب مجھے لگ رہا ہے کہ ہندوستانی گورنمنٹ، اس وقت یہاں پر کافی احتجاج ہوئے، آپ کو معلوم ہے کہ بہت بڑے پیمانے پر یہاں کے عوام نے اس پر احتجاج کیا اپنی حکومت کے خلاف بھی کہ اس طریقے کا نہیں ہونا چاہیے، اور آئی ای میں نہیں، وہاں پر عالمی توانائی ایجنسی میں جا کر ایٹمی توانائی میں وہاں پر ہندوستان کو نہیں کہنا چاہیے تھا، ایران کے خلاف ووٹ نہیں دینا چاہیے تھا. اس پر کافی یہاں پر وہ رہا، اور میرے خیال میں اب گورنمنٹ آف انڈیا کو شاید یہ لگنے لگا ہے کہ اس کا موقف اس سلسلے میں غلط تھا، اور وہ ظاہر بات ہے کہ وہ ہندوستان کا موقف تھا نہیں جناب والا، وہ ہندوستان کے ساتھ جو بلیک میل جاری تھا وہ ہے اسرائیل اور امریکہ کا جو بلیک میل تھا وہ جاری تھا، اور اسی کی وجہ سے انہیں ایسا ووٹ دیا جا کر، اور اس پر کافی یہاں پر ہندوستان میں لیدے بھی ہوئی. لیکن کبھی کبھی حکومتوں کی اپنی کچھ ہوتی ہیں، مجبوریاں ہوتی ہیں اور ان کے مسائل ہوتے ہیں، माजी में उन्होंने किया है, ये बात है, और यहाँ के लोग उससे मुतमईन नहीं थे, बड़ी तादाद में लोग मुतमईन नहीं थे, यहाँ की कई पार्टियों ने उस पर काफी उनकी मुखालिफत भी की और अखबारों में भी बहुत निकला, सब कुछ हुआ, लेकिन चूंकि अवाम में इस सिलसिले में बहुत ज्यादा बेदारी नहीं है तो वो तो मुजाहरों के लिए सड़क पर नहीं आ सके। मगर अब अगर हिंदुस्तान की हुकूमत ये बात कह रही है, हिंदुस्तान का एक वजीर वहां जाकर ये बात कह रहा है, तो अब इस पर शक की कोई गुंजाइश नहीं है कि अगर वो कहते हैं कि नहीं इनका जो है वो जो साइंसदानों पर हमले हुए ईरानी वो दहशतगर्दी है, तो इसको जिस तरह वो कह रहे हैं उन्हीं अल्फाज की शक्ल में ईरानी अवाम को लेना चाहिए और ईरानी हुकूमत को लेना चाहिए और यह समझना चाहिए कि हिंदुस्तान के मौकफ में एक बहुत बड़ी तब्दीली आई है और इसी वजह से हिंदुस्तान के एक वजीर ने, बहुत जिम्मेदार ओहदे पर हैं वो, उन्होंने वहां जाकर ये बात अगर कही है कि वो ईरान के पुरमन एटमी प्रोग्राम की हिमायत करते हैं, तो उसको उसको ना मानने की कोई वजह नहीं है, उनका सही कहना है वहां पर। और हमको इस सिलसिले में डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला को मुबारकबाद देंगे कि उन्होंने हक बयानी से काम लिया, वहां जाकर हक बात कही, इससे बहुत खुशी की बात है, मैं तो इससे मुतमईन हूं उनकी बात से। और अगर ऐसा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कर रही है तो यकीनन उसके मौकफ में एक बहुत बड़ी तब्दीली है और जिससे हिंदुस्तान के अवाम खुश होंगे और खुश होने की बात है उनके लिए। तो बहरहाल मैं इस पर माजी के ऊपर अगर उन्होंने कोई गलती की भी है तो हाल में उसको दुरुस्त कर लें, यही बहुत बेहतर है। और वो जितना भी ईरान के साथ करीब जा सकते हैं, क्योंकि ईरान एक मजलूम कौम है और मजलूमियत का साथ देना हिंदुस्तानियों ने हमेशा किया है, हिंदुस्तान फिलिस्तीन के साथ हमेशा रहा है, उनकी आवाज में आवाज बुलंद करता रहा है और अपने को वो कहता रहा है कि हम गांधी जी के रास्ते पर चलते हैं, और गांधी जी मजलूम परस्त शख्स थे, मजलूमियत का साथ देने वाले आदमी थे। तो इस वक्त भी हिंदुस्तान की हुकूमत का मौकफ यही होना चाहिए कि वो ईरान के साथ एक मजलूम कौम के साथ रहे, और मुझे यकीन है कि यार लाख उसके ऊपर प्रेशर हो, लाख उसके ऊपर दबाव हो, वो उसको रेजिस्ट करेगी और उसका मुकाबला करेगी पूरी ताकत इस्तेकामत के साथ, और हिंदुस्तान और ईरान के बीच में अमेरिका नहीं आ सकेगा या इसराइल अपनी टांग नहीं डाल सकेगा, जो बहुत ज्यादा कोशिश कर रहा है, क्योंकि उसके अपने सारे तजारती मफाद हिंदुस्तान के साथ वाबस्ता, और हिंदुस्तान एक बहुत बड़ी मंडी है उसके लिए जिसको वो खोना नहीं चाहता, और वो चाहता है कि इस मंडी पर एक उसका कब्जा हो जाए। आप और एक बात और कहना चाहूंगा यहां पर कि जो सऊदी अरब से पेट्रोल दिलवाने की बात की जा रही है, इसका भी अगर हिंदुस्तान ने ऐसा कर लिया किसी दिन गलती के साथ, तो हिंदुस्तान को ब्लैकमेल का सामना करना पड़ेगा, सऊदी अरब के ब्लैकमेल का सामना करना पड़ेगा और मनमानी कीमतों पर तेल खरीदना पड़ेगा, जिसका खमियाजा हिंदुस्तानी अवाम को भुगतना पड़ेगा। अभी हमारे यहां गुफ्तगू हो रही है कि तेल की कीमत 5 रुपए फी लीटर बढ़ने वाली है, जो अखबारों में खबरें आ रही हैं, उसके बाद क्या आलम होगा जब हिंदुस्तान अगर बिल्कुल मुनहसिर होकर रह जाएगा एक पेट्रोलियम के सिलसिले में अपना, तो
बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया शमसी साहब। रिजवी साहब, हमारे पास 1.5 मिनट का वक्त है, एटमी प्रोग्राम के ताल्लुक से हिंदुस्तान के मरकजी वजीर ने जो कहा है उससे आप किस हद तक मुतमईन है?
देखिए, शमसी साहब ने जैसा कि कहा, एक जिम्मेदार वजीर हैं और उन्होंने ईरान में आके जो ये बयान दिया है कि इस्लामी जमहूरी ईरान का जो पुरमन एटमी प्रोग्राम है उसका ईरान हामी है, और एटमी साइंसदानों के कत्ल को भी उन्होंने जो है वो एक गलत इकदाम करार देते हुए उसकी मजम्मत की है। इसमें कोई शक नहीं कि वो ये उनका जाती बयान तो है नहीं कि उन्होंने ईरानी गवर्नमेंट को खुश करने के लिए ये बयान दिया हो, ये बयान जो है वो इस हालत में दिया है कि ईरान के तेल के हवाले से जो है इस्लामी इंडिया का जो मौकफ है वो बार बार सामने आ रहा है और वो अमरीका और यूरोप की जानिब से जो दबाव है, जो प्रेशर है, उस पर जो है वो डटा हुआ है। तो मैं भी ये समझता हूँ कि माजी में अगर कहीं थोड़े बहुत जो है वो ऊँच नीच चाहिए इस हवाले से कि बाज मामलात में जो है वो हिंदुस्तान के मौकफ से ईरानी हुकूमत या सिस्टम जो है उसने नाराजगी का इजहार किया या उसमें कुछ थोड़ी मसाइल पैदा हुए और दूरी आई, तो ये जो है वो हुकूमत हिंदुस्तान के इस ताज़ा मौकफ से, और जैसा कि शकील शमसी साहब ने कहा कि कल एक वफ़द जो है वो मजीद जो है वो आ रहा है ईरान आ रहा है तिजारती ताल्लुकात के उम्र को बढ़ाने के लिए, जायजा लेने के लिए, तो से वाज़ेह तौर पर ये नजर आ रहा है कि हुकूमत हिंदुस्तान के मौकफ में जो है वो इस हवाले से तब्दीली आई है और इस्तेहकाम जो है वो देखने में आ रहा है।
बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। इसमें दोहराया नहीं कि हिंदुस्तान और ईरान इलाके के दो अहम ममालिक हैं, और जैसा कि सदर डॉक्टर महमूद अहमद नजाद ने कहा है कि इनके दुश्मन और इनके मफादात एक हैं, लिहाजा इन्हें दोनों मुल्कों को मिलकर साम्राज्यी ताकतों के सामने मुज़ाहमत करनी चाहिए, और इन दोनों मुल्कों के दरमियान क़ुर्बत इन मुल्कों के साथ ही खुद